सो खुदावंद के जलाली नाम में आप सबको सलाम कहते हैं। इससे पहले कि इफ़सियों पहला बाब उसकी 20वीं आयत में से सीखना शुरू करें, मैं चाहता हूँ आए हम सब चंद लम्हों के लिए खुदा के हुज़ूर झुकें। किसी किस्म की फ़िक्र, परेशानी, कमी कमज़ोरी हमारी तवज्जो को हटाती है तो खुदावंद को अपना दिल, दिमाग, सोच, ख्यालात देंगे और कहेंगे कि खुदा बाप तू इन सब को संभाल। सो हम सब झुक जाएंगे और दुआ करेंगे। खुदा बाप मेरे लबों का रखवाला बन, ताकि आज जो भी बातें खुदावंद तेरे कलाम में से तेरे लोगों की हौसला फजाई के लिए, तेरे लोगों की तरबियत के लिए मेरे लिए हों खुदावंद खुदा, और हम सब बहुत ज़्यादा बरकत पाएँ और इस फ़ानी, इस आर्जी दुनिया में तुझ अबदी खुदा पर अपनी नज़रें जमाए रखें। आई हुई तमाम कलीसिया को बड़ी बरकत दे और तेरा पाक रू आज हम सब को सिखाए। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। इफ़सियों पहला बाप उसकी 19वीं आयत से पढ़ेंगे और मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ इस आयत को पढ़ें, ताकि आप सब इसे याद भी करें, ताकि आपको याद रहे और जब मौका मिले तो आप दूसरों को भी बताने वाले बने। 19वीं आयत में यूँ लिखा है, और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है, उसकी बड़ी कुवत की तासीर के मुआफिक जो उसने मसीह में की, जब उसे मुर्दों में से जलाकर अपनी दाही तरफ आसमानी मकामों पर बिठाया। आमीन। हम पिछले महीने से इसी कुवत के बारे में सीख रहे हैं कि जिस कुदरत ने बहुत से अजीब काम किए, वही कुदरत खुदा खुद शामिल था, खुदा खुद काम कर रहा था यीशु मसीह को मुर्दों में से ज़िंदा करने के लिए, ताकि हम जो इस दौर के लोग हैं, ताकि जो लोग उस वक्त मौजूद थे उनके लिए उम्मीद हो। उनके लिए क्या हो? उम्मीद। उम्मीद से मुराद यानी के वो एक दिन ऐसा ही तजर्बा हासिल करेंगे कि जैसे यीशु को खुदा ने ज़िंदा किया, जो कोई यीशु पर ईमान लाएगा वो भी ज़िंदा किए जाएंगे। इसलिए हम मसीही ईमानदारों के लिए यानी कि मसीही लोगों के लिए मौत डर नहीं होनी चाहिए। मौत ऐसा दरवाज़ा है जो हमें इस दुनिया से दूसरी दुनिया में, अबदी दुनिया में पहुंचाता है, जहां पर हम यीशु मसीह को रूबरू देखते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम हमें यही बताता है। और जब इंसान मौत का डर रखता है तो क्या होता है? सच ये है कि मौत आनी है, उसे कोई भी नहीं रोक सकता, ये खुदा का इंतज़ाम है। हम यहाँ पर इस ज़मीन पर किसी मकसद के लिए भेजे गए हैं, ताकि इस मकसद को पूरा करके अपने हकीकी वतन में जाएं, जहाँ पर यीशु मसीह खुदा की दाही तरफ आसमान पर बैठा हुआ है। सो जिस तरह यहाँ पर खुदा का बंदा पालूस रसूल हमें सिखाना चाहता है पहले तीन बापों में कि मसीह में तुम्हारी हालत, मसीह में तुम्हारी शिनाख्त, जैसे हमारा शिनाख्ती कार्ड बनता ना इस ज़मीन पर, तो पता चल जाता है ये मसीही है या मुस्लिम है या सिख है या जापानी है या अमरीकी है, सो शिनाख्त से पता चल जाता है। इसी तरह हमारी शिनाख्त मसीह में यानी कि यीशु मसीह का नाम हमारे नामों के साथ जब जुड़ जाता है तो हमारा जो मसीही नाम है वो इस ज़मीन पर भी और आने वाले जहां में भी हमारी शिनाख्त को ज़ाहर करेगा कि हम किसके लोग हैं, कि हम किसके लोग हैं। इसलिए यहां पर इस ख़त में जो आपके साथ मैंने शुरू किया है, इसमें खुदा का बंदा पालूस रसूल चाहता है कि हर एक भाई, हर एक बहन जाने कि वो मसीह में कौन है, उसकी शनाख़त क्या है, उसकी पहचान क्या है, उसका मकाम क्या है, उसे क्या कुछ हासिल है। बाइबल मुकद्दस की हर एक किताब का कोई ना कोई मौजू है। मिसाल के तौर पर हम पुराने अहदनामों में 5 किताबों को देखते हैं, कौन कौन सी? अय्यूब, जबूर, इम्साल, गज़लो गज़लात और फिर अय्यूब, जबूर, इम्साल, वाज़ और फिर गज़लो गज़लात। ये 5 किताबों को जब हम देखते हैं तो इनके पीछे एक मकसद है। मिसाल के तौर पर जबूर की किताब, अय्यूब की किताब, इम्साल की किताब, उसके बाद वाज की किताब, फिर गज़लो गज़लात। किसी को पता है इनका मतलब क्या है, इनके पीछे मकसद क्या है? सीखना चाहते हो? सीखना चाहते हो तो फिर गौर से सुने। अय्यूब की किताब, अय्यूब की किताब हमें सिखाती है, पूरी किताब में जब हम देखते हैं तो अय्यूब की किताब हमें सिखाती है कि इस ज़मीन पर जो रूहानी जंग है, अबलीसी तस्वीरों के साथ जो हमारी लड़ाई है, इस ज़मीन पर हम किस तरह दुख सहना सीख सकते हैं, किस तरह उस दुखों में इत्मीनान पा सकते हैं। और ये अय्यूब की ज़िंदगी हमारे सामने क्या है? मिसाल के तौर पर है। सो अय्यूब की किताब हमें सिखाती है कि इस दुखों भरी दुनिया में किस तरह हम इत्मीनान पा सकते हैं। फिर जबूर की किताब को देखते हैं कि इस ज़मीन पर बहुत से खुदा हैं, बहुत से बुत, बहुत से क्या कहते हैं कि रास्ते हैं मानने के लिए, लेकिन जबूर की किताब हमें बताती है कि खुदावन खुदा वाहद एक खुदा है जो प्रस्तश, जो रहाई देने के काबल है। जबूर की किताब हमें यह बताती है कि हम किस तरह उस वाहद खुदा की इबादत कर सकते हैं। फिर इम्साल की किताब कि इस दुनिया में रहते हुए हमें खुदा के साथ चलने के लिए क्या ज़रूरत है? खुदा की हिकमत की। इसलिए खुदा का बंदा सुलेमान कहता है कि खुदा का खौफ इलम का शुरू है, खुदा का खौफ इलम का शुरू है। फिर हम वाज की किताब को देखते हैं। वाज की किताब जब सुलेमान बादशाह ने लिखी तो वाज का मतलब है मनादी करने वाला। क्या करने वाला? वाज को उर्दू में क्या कहते हैं? पैगाम देने वाला, मनादी करने वाला। इंग्लिश के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है प्रीचर, यानी कि प्रचार करने वाला। तो यहाँ पर खुदा का बंदा सुलेमान कहता है कि इस ज़मीन पर बग़ैर खुदा के दौलत, शोहरत, इज़्ज़त बातल ही बातल है, बेफ़ायदा है। इसलिए वो कहता है वाज की किताब में कि बातल ही बातल, वाज कहता है कि बातल ही बातल सब कुछ है। सुलेमान बादशाह जो दौलत में, हिकमत में, शानो शौकत में, हर तरह की चीज उसके पास थी, वो कहता है बगैर खुदा के ये सब क्या है? बेकार है। और फिर गज़लो गज़लात, ये 5वीं किताब कि इस बेवफा दुनिया में कोई भी वफा करने वाला नहीं और सिर्फ यसु मसीह है। गज़लो गज़लात की किताब का जो मेन कहते हैं कि अहम शख्स है वो है यसु मसीह, किस तरह अपने लोगों से वफादारी करता है। सो इन बातों को बताने का मकसद ये है कि अय्यूब हमें सिखाता है कि हम किस तरह दुखों में सब्र कर सकते हैं, दाऊद नबी के जबूर हमें बताते हैं कि हम किस तरह जिंदा खुदा की प्रस्तश और इबादत कर सकते हैं, और फिर हमें इम्साल की किताब बताती है कि इस जहां में ज़िंदगी बसर करने के लिए हमें खुदा के खौफ में चलने के लिए उसकी हिकमत की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा का खौफ इलम का शुरू है। और फिर वाज की किताब हमें सिखाती है इस आर्जी दुनिया में, इस दम तोड़ती हुई दुनिया में, इस फ़ानी दुनिया में, इस शान व शौकत की भाग दौड़ में लगी हुई दुनिया में खुदा के बगैर शान व शौकत, रुपया, पैसा, दौलत, माल, सब कुछ बेकार है। और फिर गज़लो गज़लात, वाहद यसु मसीह है जो वफ़ादार है। हम सब बेवफा हो जाते हैं, लोग बेवफा हो जाते हैं किसी भी हालात में, लेकिन खुदा क्या करता है, वफादारी करता है। सो यही बात हम यहाँ पर सीखेंगे इफ़सियों पहला बाप उसकी 20वीं आयत में कि खुदा का पाक रूह किस तरह वफादार रहा, खुदा किस तरह वफादार रहा जब यीशु मसीह ने यह दावा किया कि तुम इस मकसद मकदस को ढा दोगे तो मैं इसे फिर उठा खड़ा करूँगा, मैं इसे फिर 3 दिन में तामीर कर दूँगा। सो मैं चाहता हूं कि आज हम देखें जो कुदरत आपके साथ है वही कुदरत क्या कर रही थी, काम कर रही थी यीशु मसीह को जिंदा करने के लिए, और खुदा का अपना हाथ काम कर रहा था। मेरे साथ चंद एक हवाला जात देखें कि खुदा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया। मेरे साथ देखें इमाल की किताब उसका 3 बाप, इमाल की किताब उसका 3 बाप उसकी हम 15वीं आयत को देखेंगे। यहाँ पर खुदा का बंदा पतरस क्या कर रहा है, पतरस और यहन्ना जब उन्होंने उस जन्म के लंगड़े को चला दिया, उस जन्म के लंगड़े को कहा कि उठ और चल फिर, तो वो जन्म का लंगड़ा जो कभी नहीं चला था वो चलना शुरू हो गया, तो उस वक्त के लोगों ने कहा कि तुमने ये किस तरह किया। इमाल 3 बाप उसकी 15 आयत, इमाल 3 बाप उसकी 15 आयत कि उस जन्म के लंगड़े को उन्होंने क्या दी, शफा दी। तो यहाँ पर लिखा है कि क्या हुआ, 15वीं आयत, मगर जिंदगी के मालक को कत्ल किया जिसे खुदा ने मुर्दों में से जलाया, उसके हम गवाह हैं। यहन्ना और पतरस यहाँ पर कह रहे हैं कि ये बंदा जो तुम्हारे सामने तंदुरुस्त खड़ा है, ये उसी यीशु मसीह के बायस यहाँ पर सेहतमंद है क्योंकि खुदा बाप ने उसे मुर्दों में से जलाया। फिर इसी बाप में हम देखते हैं 4 बाप की हम 10वीं आयत को देखते हैं, वहाँ पर भी यही बात है। क्या लिखा है 10वीं आयत में, इमाल 4:10 उसकी 10वीं आयत में लिखा है, और तुम सब और इसराइल की सारी उम्मत को मालूम हो कि यीशु मसीह नासरी जिसे तुमने सलीब दी और खुदा ने मुर्दों में से जलाया, उसी के नाम से ये शख्स तुम्हारे सामने तंदुरुस्त खड़ा है। सो खुदा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया और वो हमको भी जिंदा करेगा। जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो वो हमें भी मुर्दों में से जिंदा करेगा, क्योंकि जो कोई उस पर ईमान लाता है ख्वाह वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। इसीलिए हमें इन बातों से वाकफ होना चाहिए, हमें इसीलिए इस सच्चाई के बारे में जानना चाहिए कि हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है, उसकी बड़ी कुव्वत की तासीर के मुआफिक जो उसने मसीह में की जब उसे मुर्दों में से जलाया। जलाया का मतलब, जलाए के लिए आप कह देते हैं बहुत दफ़ा कि ये जलाना, जो लकड़ियों को जलाना, ये वो लफ्ज़ जलाना नहीं है, ये है ज़िंदा करना, दोबारा ज़िंदा कर देना। सो खुदा बाप ने यीशु मसीह को क्या किया, मुर्दों में से ज़िंदा किया, और कहाँ पर बिठा दिया, आसमानी मकामों पर, आसमानी मकामों पर। सो मेरी ख्वाहिश ये है कि आप सब अपनी पहचान, अपना मुकाम, अपनी हालत, अपना क्या कहते हैं शिनाख्त पाएं यीशु मसीह में। यीशु मसीह में आपकी शिनाख्त, आपको पता क्या है, सीखना चाहते हैं, याद रखना चाहते हैं, हम इस ज़मीन पर यीशु मसीह में क्या हैं, महफूज हैं। क्या हैं हम यीशु मसीह में इस ज़मीन पर क्या हैं, महफूज हैं। आप अपनी शिनाख्त सीखना चाहते हैं, मेरे साथ एक हवाला निकालें, 2 करिन्थियों 5:17, वहाँ पर खुदा का बंदा पालूस रसूल हर उस बंदे को, हर उस बंदी को यानी कि बहन को, भाई को, बुजुर्ग को, बच्चे को बताता है कि तुम्हारी शिनाख्त क्या है, तुम्हारी पहचान क्या है। जैसे मेरी पहचान, जब मैं पाकिस्तान में आता हूँ तो मेरा कार्ड देखकर लोग कहते हैं कि ये पाकिस्तानी है, जब मैं वहाँ पर चला जाता हूँ तो लोग कहते हैं ये अमरीकी है। इसी तरह हम सब की शिनाख्त है, हम सब की शिनाख्त है, और वो शिनाख्त मैं चाहता हूँ आप सब जानें, भूलें नहीं, कभी भी ना भूलें। जैसे आप नहीं भूलते कि मैं फलां का बेटा, फलां की बेटी हूँ, वैसे ही हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम मसीह के लोग हैं और हमारा मकाम और हालत क्या है। दूसरा करंथियों 5:5 उसकी 17 आयत, यहाँ पर लिखा है, इसलिए यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि जो यीशु मसीह में हैं उनके लिए क्या लिखा है, इसलिए अगर कोई, मेरे साथ कहें, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। यहां पर क्या कहता है खुदा का बंदा पौलुस, इसलिए अगर कोई मसीह में है। आप में से कितने मसीह पर ईमान रखते हैं? तो इसका मतलब हम सब मसीह में हैं, मसीह में हैं, तो हमारी शिनाख्त क्या हुई, हम नई मखलूक हैं। हम क्या हैं? नई मखलूक, नए इंसान। पुरानी इंसानियत, पुरानी बातें खुदा ने वो अपने खाते में से काट दी हैं। हमारे जो गुनाह थे खुदा ने वो यीशु मसीह पर ला दिए। अब हमें क्या कहते हैं खुदा के कलाम के मुताबिक, खुदा क्या कहता है, नई मखलूक। क्या कहता है? और फिर क्या कहता है, तुम रास्तबाज हो। क्या कहता है? क्या हम अपने कामों से रास्तबाज बन सकते हैं? नहीं। क्या हम अपने कामों से अच्छे बन सकते हैं? नहीं। क्या हम अपनी जुबान से अच्छी बातें निकाल सकते हैं? हरगिज नहीं। लेकिन जब हम नई मखलूक बन जाते हैं तो खुदा का पाक रूह हमें नई जिंदगी बख्शता है, नए तौर पर हम चलते हैं, नई जिंदगी गुजारते हैं। इसलिए इस आयत को मेरे साथ याद करने की कोशिश करें, इसलिए अगर कोई मसीह यीशु में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। हमारा रिश्ता खुदा के साथ नया हो गया, हम मसीह के लोग बन गए, हम ईमानदार ठहराए गए। पहले हम अजनबी थे, अब खुदा के लोग बन गए, पहले खुदा से दूर थे लेकिन यीशु मसीह में अब हम खुदा के नज़दीक हैं। पहले हमारा कोई वतन नहीं था लेकिन अब हमारा आसमान क्या है, वतन है। नहीं यकीन? कड्डो हवाला। इस वाले को पढ़कर फिर ख़त्म करेंगे ताकि आप अपने अपने घर को जाने वाले बने। इफ़सियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 2:2 उसकी 19वीं आयत। इफ़सियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 2:2 उसकी 19वीं आयत। ये हमारी पहचान है। बहुत दफ़ा लोग अमेरिका में मुझसे पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, इंडिया से हो, मैक्सिको से हो, कौन हो आप? तो मैं उनको बताता हूँ मेरी 3 क्या कहते हैं कि रहने की जगह है। मैं 3 जगहों का हरैशी हूँ, मकामी हूँ जिसे कहता हूँ। वो कहते हैं आप कैसे कह सकते हैं 3 जगह? मैं उनको फिर बताता हूँ कि मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ तो मुझे पाकिस्तान की शहरियत हासिल है, अब मैं अमेरिका में रहता हूँ तो मुझे अमेरिका की शहरियत हासिल है। और वो कहते हैं ये तो 2 हो गई, तीसरी। फिर उन्हें मैं बताता हूँ कि यीशु मसीह पर ईमान रखने के बायस अब मैं आसमान का भी शहरी हूँ, तो वो हैरान हो जाते हैं। सो आप भी कह सकते हैं कि ना सिर्फ आप पाकिस्तान के हरैशी हैं, रहने वाले हैं, बल्कि आपका घर आसमान पर भी है। और ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया है। 19वीं आयत में लिखा है, अब तुम परदेसी और मुसाफर नहीं रहे। परदेसी और मुसाफिर उसे कहते हैं जिसका कोई घर बार ना हो, कोई ठिकाना ना हो, रहने की कोई जगह ना हो, कोई मकाम ना हो। पौलुस कहता है, बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे بلکہ مقدسوں کے ہم وطن. مقدسین کون؟ جو یسوع مسیح میں مر گئے ہیں اور آسمان پر ہیں, ان کے ہم وطن. ہمارا وطن کہاں پر ہے؟ اب آسمان پر, اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے. یہ بھی آپ کی پہچان ہے, آپ خدا کے گھر کے لوگ ہو, خدا کے بیٹے اور بیٹیاں, یہ آپ کی پہچان ہے. میری بیوی کیری سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جب وہ کام پر جاتی ہے, جب انٹرویو ہوتا نا تو اسے پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو, تو وہ کہتی ہے آئی ایم چائلڈ آف گاڈ, میں خدا کی بیٹی ہوں. تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں, ہیں؟ تو پھر ان کو بتاتی ہے کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے میں ایمان لائی ہوں, تو میں خدا کی بیٹی ہوں. آپ سب بھی کہہ سکتے ہیں میں خدا کی بیٹی ہوں, میں خدا کا بیٹا ہوں. یہ آپ کی پہچان ہے, یہ آپ کا مقام ہے خداوند میں. آئے ہم خدا کے حضور جھکیں. آسمانی باپ, آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے, اور جو کچھ سیکھا ہے اسے یاد رکھنے کی, اور خداوند خدا اس پر یقین کرنے کی, اور دلیری سے دوسروں کو بتانے کی ہمیں قوت اور طاقت دے کہ ہماری شناخت تجھ میں کیا ہے, کہ ہم نئے مخلوق ہیں, ہم آسمانی شہری ہیں, اور ہم تیرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. سو آج کے کلام کے وسیلہ سے سب کو بڑی برکت دے, یسوع کے نام میں آمین.